नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री का मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जलते चिराग गुलना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। जलते चिराग
एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये दिखाओ तुम।
जलते चराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो,
किसने ये तुमसे कह दिया अपनों से ही प्यार करो, किसने ये तुमसे कह दिया अपनों से ही प्यार करो, दुश्मन को भी है दो तो, दुश्मन को भी है दोस्त तो, अपने गले लगाओ तुम।
जलते चराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की जो
झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद, झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद, सच्ची मसीह जवान बनो, सच्चे मसीही जवान बनो, नामे मसीही फैलाओ तुम। जलते चराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर उसके वचनों की आशीषों को पाते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन दिनों गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा पौलुस के अलग अलग अनुभव, पत्रस के साथ, बरनाबास के साथ, यहूदियों के साथ और गैर यहूदियों के साथ। हम इसी क्रम में अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं, ताकि प्रभु हम इस जीवन के द्वारा जिसे आपने हमें दिया है हम आपको आदर दे सकें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। हमारी प्रार्थना है इस समय जब हम आपके वचन को सुनते और सीखते हैं, आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक बातें जो आज हम सुने हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। आप हमें से प्रत्येक भाई बहनों से बोले और बातचीत करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी से उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और किसी न किसी रूप से परेशान हैं। पिताजी, आप प्रत्येक की सहायता कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन आप में शांति और आनंद को प्राप्त करे। हाँ प्रभु, इस वक्त हम सबसे अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु आज की इस अध्ययन के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, तो आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। विश्वास द्वारा धार्मिकता का यह सरल और सीधा अभिकथन है। मेरा विश्वास करें, एक रूढ़िवादी को इस अभिकथन से बड़ी परेशानी होती है। यह पद प्रत्येक रूढ़िवादी को परेशान करती है। मसीह में विश्वास करके भी आपको उसमें कुछ जोड़ना है जो सुसमाचार को क्षतिग्रस्त करता है। ध्यान दीजिए कि पौलुस यहाँ क्या कहता है। यदि एक यहूदी को विश्वास द्वारा धार्मिकता पाने के लिए व्यवस्था का त्याग करना पड़े, तो पौलुस का प्रश्न है, अन्य जाति को व्यवस्था के अधीन क्यों होना है या आना है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में यह यरूशलेम सभा का एक बड़ा विवाद का विषय था। क्या एक अन्य जाति को व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया और निष्कर्ष निकाला कि अन्य जाति उद्धार पाने के लिए व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि उसे दैनिक जीवन में एक ऊंचे स्तर पर बुलाया गया है। मेरे प्रियो, क्या अन्य जाति व्यवस्था द्वारा धार्मिकता प्राप्त कर सकती है? जबकि यहूदियों ने सिद्ध करके दिखा दिया कि यह संभव नहीं है। यहूदियों के पास 1500 वर्षों से व्यवस्था थी और वे व्यवस्था पालन में सिद्ध नहीं हुए, तो फिर अन्य जाति विश्वासियों को व्यवस्था पालन के लिए विवश क्यों किया जाए? उस व्यवस्था के पालन में जिसने एक भी यहूदी को उधार नहीं दिलवाया, अन्य जाति विश्वासी अनुग्रह द्वारा पहले ही धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अतः अन्य जाति यदि अनुग्रह से अलग होकर व्यवस्था पालन करें तो यह एक बड़ी भारी भूल होगी या होना है, क्योंकि व्यवस्था तो यहूदियों को भी धर्मी नहीं ठहरा पाई थी। यह जानकर कि मनुष्य, ध्यान दीजिएगा कि यह जानकर कि मनुष्य इस पद पर हम अलग से विचार करें, यह कुछ ऐसा है जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका उद्धार हो गया है या नहीं। यह पद किस प्रकार के मनुष्य की बात या चर्चा कर रहा है? यूनानी भाषा आंथ्रोपोस में इस शब्द से अभिप्राय है संपूर्ण मानव जाति। इसमें रंग, जाति, समाज का भेद नहीं आता है। क्रूस के सामने सब मनुष्य एक समान या एक बराबर हैं। सबके सब पापी हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। मैं भी पापी हूं। यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता है। जी हाँ, मूसा की व्यवस्था या अन्य कोई भी धर्म व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आप कहें कि आपको किसी एक कलीसिया में ही होना है या किसी विशेष अनुभव को पाना है या उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना है, तो आप इस पद का खंडन करते हैं। यह जानकर भी कि मनुष्य व्यवस्था के काम के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया है। जी हाँ, व्यवस्था कोई भी व्यवस्था हो सकती है। यह पद मसीही विश्वास को सर्वथा भिन्न बना देता है। मसीही विश्वास अन्य विश्वासों की तुलना में भिन्न है, क्योंकि इसमें कर्म द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा धार्मिकता है। सब अन्य विश्वास जो पृथ्वी में है कहते हैं करो, परंतु मसीही विश्वास कहता है किया जा चुका है। एक महान काम किया जा चुका है जिस पर हमें केवल विश्वास करना है। अब मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब एक प्रश्न उठता है, आप यीशु को श्रापित कहेंगे तो कैसे कहेंगे? यदि आप मुझसे कहें, भाई आपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया तो आपको सब कुछ नहीं मिला, तो पवित्र आत्मा आपको वह सब देगा जो आपको यीशु मसीह में नहीं मिला। तो आज आपको इसकी खोज करनी चाहिए। मेरे मित्रों, ऐसा करना क्रूस पर किए गए प्रभु यीशु के काम का मान घटाता है। वह इस पृथ्वी पर आया कि आपके और मेरे लिए मरे और हमारे उद्धार को ऐसा सिद्ध करे कि जब वह स्वर्ग जाकर परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठे। इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय के 3 पद में इसे हम पाते हैं, अर्थात अब उसके लिए कोई काम नहीं बचा है। बैठ जाने से पूर्व या पहले उसने सब काम कर लिया था। अब आप यदि कहें कि उसने हमारे लिए सब कुछ नहीं किया, तो आप वास्तव में कह रहे हैं कि यीशु श्रापित है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में, आप मुझे पवित्र आत्मा का वचन नहीं सुना रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे मित्रों, आपने जब मसीह को ग्रहण किया था, तब उसने आपको इस जीवन में आवश्यक सब कुछ दे दिया था। मसीह यीशु ही सब वरदानों का दाता है। पवित्र आत्मा यहाँ आपको देता है, परंतु वह प्रभु यीशु का दान ही वितरित करता है। प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। मेरे प्रियो, हमें उसमें सब कुछ प्राप्त है। वह आदि और अनंत है। जब आप आमीन कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भरे पूरे हो गए। मसीह यीशु ने यह सब आपके लिए किया है। यहाँ पर यह पद अत्यधिक स्पष्ट तो है, परंतु इसे समझना असंभव है। यह जानते हुए कि मनुष्य स्त्री या पुरुष, गोरा या काला, गरीब या अमीर, भारतीय या गैर भारतीय, चीनी, अमेरिकी, रोमी या कोई भी, व्यवस्था के कामों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं, गणित के अनुसार से विश्वास जोड़ और कुछ नहीं, इसकी अपेक्षा विश्वास जोड़ और कुछ नहीं है। जी हाँ, इसी पद में आगे लिखा है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। ध्यान दीजिए, हम से पौलुस का अभिप्राय क्या है। वह कहता है कि उसने और उसके सह विश्वासी यहूदियों ने व्यवस्था का त्याग करके उद्धार के लिए मसीह यीशु पर विश्वास किया कि धर्मी ठहराए जाएं, व्यवस्था के द्वारा नहीं। इस पद का उपसंहार अति स्पष्ट है, परंतु किसी के समझ में नहीं आता। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा, अतः हम मसीह के कामों की मानहानि न करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ नहीं किया। मैं नरक जाने वाला पापी था, मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसमें विश्वास किया और मेरा सिद्ध उद्धार हुआ है। अगला पद समझने में और अधिक कठिनाई है। आइए हम देखें गलातियों की पत्री 2:17, गलातियों की पत्री 2:17, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। ध्यान दीजिए, शब्द धर्मी, धर्मी के यूनानी शब्द का अर्थ है किसी को उचित ठहराना, न्याय में उचित ठहराना। मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण हम न्यायोचित ठहराए गए हैं, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में दंड भोगने वाला पापी परमेश्वर के साथ उचित संबंध में आ गया है। मसीह में हमारे उद्धार के आधार पर है। यह पापों की क्षमा ही नहीं, मसीह की धार्मिकता भी है। मेरी धार्मिकता मेरी नहीं है, क्योंकि वह स्वीकार्य नहीं है। यह धार्मिकता मसीह की है जो सिद्ध है। इस पद का अर्थ यह है, मसीह द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लिए यहूदियों को व्यवस्था का त्याग करना था और इसके लिए उन्हें पापी का स्थान ग्रहण करने की आवश्यकता थी। इसका अर्थ क्या यह हुआ कि प्रभु यीशु उसे पापी बनाता है? पौलुस कहता है, कदापि नहीं। यहूदी और अन्य जाति दोनों ही स्वभाव से पापी हैं। आप और मैं भी पापी हैं और उसे व्यवस्था के माध्यम से धार्मिकता प्राप्त नहीं होगी। यरूशलेम की सभा में पत्रस ने यही कहा था, प्रेरितों के काम 15:10-11 में, अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि पत्रस और पौलुस विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विचार पर एक मन थे। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 2:18 में, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि यदि मैं व्यवस्था के अधीन हो जाऊं तो मैं अपराधी बन जाता हूं, परंतु वह व्यवस्था से मुक्त है। वह व्यवस्था से मुक्त कैसे हुआ? गलातियों के पत्री 2:19 में लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है, जब मसीह मरा तो वह मेरे लिए मरा, वह मेरे स्थान में मरा, क्योंकि व्यवस्था ने मुझे दोषी ठहराया था। 2 कुरिन्थियों के पत्री 3:7 में पौलुस व्यवस्था को मृत्यु की वाचा कहता है, वह मुझे दंड के योग्य ठहराती है। विधि विधान के अधीन परमेश्वर इसराइल का नाश कर देता, परंतु उसने उन्हें 5 चढ़ाने का विधान दिया था जो मसीह की ओर संकेत करता था। परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह के कारण उद्धार दिलाने में सामर्थी था। अतः दया का आसन अनुग्रह का आसन था, जहां वह जाति पापों की क्षमा पाती थी, अतः व्यवस्था मुझे दंड के योग्य ठहराती है। व्यवस्था हमें दोषी बनाती है। व्यवस्था के आधार पर हम दोषी हैं, अतः व्यवस्था हमारे लिए मसीह यीशु की मृत्यु की उत्तरदायी है। व्यवस्था कहती थी कि हमें मरना होगा। अब यदि मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं तो मैं व्यवस्था का उत्तरदायी नहीं। व्यवस्था तो मुझे मार चुकी है। मैं व्यवस्था के लिए मरा या मृतक हूं। अतः व्यवस्था मेरे लिए वह काम नहीं कर पाई जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया। उसने मेरा स्थान लेकर अपनी जान ही नहीं दी, मुझे जीवन दान भी दिया। वह मरकर फिर से जी उठा। इस प्रकार व्यवस्था ने मुझे बंदी बनाया, दोषी ठहराया, दंड दिया और अंत में मेरी हत्या की। व्यवस्था हमारे लिए बस इतना ही कर पाई थी। अतः यदि आप व्यवस्था का मार्ग चुनते हैं तो आप मृत्यु को चुनते हैं। जीवन तो केवल मसीह यीशु में है और हमें जीवन चाहिए। आपको और मुझे जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए जो सिर्फ यीशु हमें दे सकता है। गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मेरे मित्रों, यह पद प्रत्येक विश्वासी से संबंधित सत्य का अनावरण करता है। हमें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रयास नहीं करना है। मैं युवाओं की कलीसियाओं में जाता रहता हूं और यदि मैं कहूं कि मैंने हजारों युवक युवतियों को मसीह को ग्रहण करते देखा है तो बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अनेक युवक युवतियों को गवाही देते हुए सुना है और वे इस पद का संदर्भ देते हैं, परंतु ऐसे जैसे आग में लकड़ियां झोंक दी हो। वे इस पद के अर्थ को घास चर रही बकरी से अधिक नहीं समझते। कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत हल्की बात समझते हैं। आज बहुत से विश्वासी क्रूस के जीवन का उल्लेख करते हैं, परंतु पौलुस इस पद में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। हमें उसके साथ क्रूस पर फिर से नहीं चढ़ना है। हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। जीवन का सिद्धांत व्यवस्था के आधार पर नहीं, जिसने हमें दोषी बनाकर मृत्यु दे दी है। हमें विश्वास में जीना है। विश्वास किसमें करें? परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करें। मित्रों, क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु हमारे पापों का दंड भोगना ही नहीं था, वह हमारे स्थान पर उसका मरना था। वह पाप बलि मात्र ही नहीं था, वह सब विश्वास करने वालों के स्थान पर था। जी हाँ, पौलुस कहता है कि वह व्यवस्था के अधीन अभियोग में खड़ा हुआ, उसे दोषी पाया गया और दंड के योग्य ठहराया गया और प्रतिस्थापन व्यक्ति होकर वह मारा गया। ऐसा कब हुआ? मसीह यीशु के क्रूसीकरण पर। पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर मर गया था। अब जो जीवित हूं, ध्यान दीजिए, मैं जीवित हूं तो किस प्रकार? मसीह में। आज वह जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है। लिखा है कि हम मसीह में अवस्थित किए गए हैं। आप इसमें अधिक कुछ नहीं कर सकते। इससे हमारा मूर्खता का विचार कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ सकते हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। मेरे प्रियो, मुझसे एक बार एक युवक ने पूछा, क्या आप क्रूसित जीवन जी रहे हैं? मेरे विचार में मैंने उस युवक को चौंका दिया जब मैंने कहा नहीं। तब मैंने उससे पूछा, क्या आप क्रूसित जीवन जी रहे हैं? एक क्षण उलझन में पड़ जाने के बाद उसने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, आपने मुझसे यह उत्तर नहीं मांगा था, आपने हां या ना में उत्तर मांगा था। अब आप भी हां या ना में उत्तर दें, क्या आप क्रूसित जीवन जी रहे हैं? उसने फिर कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, आप या तो जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, और सच बात तो यह है कि आप नहीं जी सकते। उसने कहा, मैं क्यों नहीं जी सकता? तब मैंने उसे बताया कि क्रूस के बारे में एक बड़ी रोचक बात है। मैंने उसे बताया कि आत्महत्या के अनेक तरीके हैं, फांसी लगा लो, गोली मार लो, जहर खा लो, बहुत ऊंचे से कूद पड़ो, कुएं में कूद पड़ो, परंतु क्रूस पर नहीं चढ़ सकते। आप एक हाथ में कील ठोक सकते हैं, परंतु दूसरे हाथ में कील कैसे ठोकेंगे? आपको पौलुस के कहने का अर्थ समझना है। जब वह कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो उसके कहने का अर्थ है कि वह पौलुस के स्थान पर मरा, वह आपके स्थान पर मरा, वह मेरे स्थान पर मरा, उसने हम सब पापियों के स्थान पर अपने आप को दे दिया, वह आपके लिए मरा, मेरे लिए मरा। मेरे प्रिय मित्र, आज परमेश्वर ने आपके स्थान को ले लिया है, उसने अपना जीवन, अपना जान आपके लिए दे दिया है, ताकि आप उद्धार पाएं, ताकि आप धार्मिक बन जाएं, ताकि आपके पापों से आपको मुक्ति मिल जाए। इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु आपको अवश्य ही उद्धार देंगे। मेरे मित्र, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों